समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 6 जुलाई 2024 की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम स्टूडियो में एक बार फिर से हाजिर हैं। आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आज सवेरे के अंत में मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में है शगुन शुक्ला। नमस्कार शगुन।
नमस्कार निखिल। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड इट्स सैटरडे। टुडे इज सैटरडे एट द एंड ऑफ द वीक एंड एज दे से मेक ईच डे योर मास्टरपीस स्टार्टिंग विद दिस सैटरडे मॉर्निंग। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस डे, पॉज, रिचार्ज एंड इंडल्ज इन द थिंग्स दैट मेक योर सोल हैप्पी। And if you were looking for a sign or a reminder, well, this is it. And now before moving forward, let me introduce you to the program as we bring you over the next half an hour, latest in the national and international news, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is 6th of July. But we'll get to that later, and before that, we'll give you the headlines.
Ji haan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बधाई दी है। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन आर्थिक विकास तथा खुशहाली देने के लिए सभी क्षेत्रों में साझेदारी को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। श्री स्टारमर की जीत के साथ ही ब्रिटेन में टोरी दल का 14 वर्ष का शासन समाप्त हो गया है। बृहस्पतिवार के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीती थी, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को केवल 121 सीटें ही मिली हैं।
ब्रिटिश इंडियन एमपी लीजा नांदी हैज बीन अपॉइंटेड यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट बाय न्यू प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। लीजा वॉज री इलेक्टेड विद अ थंपिंग मेजोरिटी फ्रॉम ब्रिटेन इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। शी विल नाउ टेक ओवर द कल्चर मिनिस्ट्री फ्रॉम लूसी फ्रेजर। The 44-year-old Lisa Mandy was among the final three contestants in the Labour Party's top leadership contest in January 2020. Lisa is the daughter of Calcutta-born academic Deepak Mandy and British mother Anne Louise Bayer. Her father was well known for his work in the field of race relations in Britain. A record number of around 29 Indian origin members of Parliament have been elected to the House of Commons in the UK's general election as results were announced yesterday.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिन की ओडिशा यात्रा पर हैं। वे भुवनेश्वर में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल पुरी में भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा में भी शामिल होंगे। वे उदयगिरी गुफाओं का दौरा करेंगे और विभूति कानोनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तथा उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करेंगे।
NEET PG Entrance Examination 2024 will be held on 11th of next month and to be conducted in 2 shifts. The National Board of Examinations in Medical Sciences has issued the revised schedule of the examination. The exam was postponed last month, a day ahead of the scheduled date of examination. The decision was taken in the wake of allegations regarding the integrity of certain competitive examinations.
Videshi Chikitsa Snatak Pariksha SMGE आज देश के 50 शहरों में 71 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। इसका आयोजन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। इस बीच राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने भी सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों को अनदेखा करने की सलाह दी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र अवैध तरीके से हासिल करने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
Uttar Pradesh police has arrested Dev Prakash Madhukar in connection with the tragic stampede in Hathras that resulted in 121 deaths. Dev Prakash Madhukar was named as the main accused in the FIR filed by the police. Earlier, a reward of 1 lakh rupees for information regarding his whereabouts was also announced. The arrest came a day after the police nabbed 6 people in connection with the stampede. They were all members of the Satsang Organizing Committee. The stampede took place on Tuesday during the satsang by self-styled Godman and preacher Narayan Sakar Hari, alias Bhole Baba.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से दो दिन के केरल दौरे पर हैं। वे आज भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री धनखड़ संस्थान के मेधावी छात्रों को उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे और वे कल कोल्लम तथा अष्टमुड़ी पश्चिमी जल का दौरा भी करेंगे।
The Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, has updated its forecast for global cereal production in 2024. The cereal supply and demand brief issued by FAO has pegged the global cereal production at 2,854 million tons, a new all-time high. The FAO has raised its projection to a better harvest outlook for maize in Argentina and Brazil as well as Turkey and Ukraine, which will offset downgrades to the outlook for Indonesia, Pakistan and several southern African countries. The wheat production forecast has also been raised based on better prospects in Asia. Global rice production is projected to reach a record 535.1 million tons. World cereal total utilization in 2024-25 is forecast to rise to 2,856 million tons, up 0.5% from the previous year, led by rice and coarse grains. FAO's forecast for international trade in total cereals remains unchanged at 481 million tons, representing a 3% decline from 2023-24.
स्पेन और फ्रांस यूरोकप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से पराजित किया। स्पेन के लिए डानी ओल्मो और माइकल मैरिनो ने गोल किए, वहीं जर्मनी की ओर से एकमात्र गोल फ्लोरियन विर्ट्ज ने किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में 3-5 से हरा दिया। अन्य क्वार्टर फाइनल में आज रात 9:30 से इंग्लैंड का सामना स्विट्जरलैंड से और रात 12:30 नीदरलैंड्स का मुकाबला तुर्की से होगा। इस प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल 9 जुलाई को जर्मनी के म्यूनिख में और दूसरा सेमीफाइनल 10 जुलाई को डॉर्टमुंड में खेला जाएगा, वहीं फाइनल 14 जुलाई को बर्लिन में होगा।
More than 1,000 cases have been redressed in first week of special campaign for redressal of family pension grievances. The Department of Pension and Pensioners Welfare has launched a month-long campaign for redressal of family pension grievances on 1st of this month for bringing ease in the life of central government family pensioners. The top three performers are Department of Ex-Servicemen Welfare, Department of Defence Finance and Ministry of Railways. The campaign will continue till the end of this month.
तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। और श्रोताओं, समय हो चला है प्रमुख महानगरों यानी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो शगुन, कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम?
निखिल, आई एम गोइंग टू बिगिन विद चेन्नई।
जी,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन हैज कंडेम्ड द वायलेंस अटैक ऑन द स्टेट बीएसपी लीडर के आर्मस्ट्रांग। इन हिज मैसेज ही हैज सेड दैट द वायलेंस इंसिडेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन द स्टेट। Inspector General Chennai North Ashra Garg informed that 8 suspects were taken into custody in connection with the case. Leaders cutting across party lines have condemned the incident. The 52-year-old leader was brutally attacked in front of his house yesterday. And now moving on to Bengaluru. The Railway Protection Force personnel in the South Western Railway Zone received training in the new criminal laws. Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 manuals were given to these trained personnel. These handbooks on the new laws consist of practical application of its provisions. The Sangyan mobile app designed and developed by the Railway Protection Force tech team is now available with these personnel as a ready reckoner. A release by the Railway Zone says that the force is now equipped to handle new legal requirements with professionalism and compliance. Sangyan Mobile App will educate and empower the railway personnel with comprehensive information on both the new and old criminal laws. It has user-friendly navigation features, a searchable database and offline access, making it a practical tool for staying informed about the latest legal developments in India. And now on to Hyderabad Metro. The Telangana state government has assured the pharma sector that it is committed to industrial growth with a multi-pronged approach, including setting up pharma clusters, a skill university, and a new energy policy. Formally opening the 73rd Indian Pharmaceutical Congress in Hyderabad yesterday, Deputy Chief Minister Malluvari Vikramarka, along with two more ministers, assured the industry to this effect. He asserted that there is no issue with power or water availability. He said a new energy policy focusing on green energy is also set to be unveiled in the state shortly. Speaking on the occasion, State Industries Minister Sridhar Babu said a proposal for pharma clusters with the objective of geographically decentralizing the industry's growth is among the policies and initiatives announced by the government within a few months of coming to power. More from Hyderabad now. The stage is all set for the crucial meeting of the chief ministers of Telangana and Andhra Pradesh this evening. Telangana Chief Minister Revanth Reddy and Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu will meet at the Mahatma Jyotibai Phule Praja Bhavan in Hyderabad. Both chief ministers will discuss various issues which are pending over since Telangana state was carved out under the Andhra Pradesh State Reorganization Act 2014. The security in and around the Praja Bhavan has been beefed up in view of the meeting. This is for the first time that Revanth Reddy and Nara Chandrababu Naidu are meeting each other after taking office as chief ministers of their respective states. The meeting is expected to discuss the distribution of assets between two states, especially those mentioned in the Schedule 9 and 10 of the Act. Sharing of water related to River Godavari and Krishna is also likely to come up for discussion. And now, Nikhil, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata metros?
यहाँ शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कल राजधानी में बाढ़ की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछली बार यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई थी। आतिशी ने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि पूर्वी जिले के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसमें विभाग के सभी अधिकारी तैनात रहेंगे और हर समय बाढ़ की निगरानी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी की है। ईडी ने मैसर्स यूरोटेक एनवायरमेंटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी जीएनसीटीडी नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया गया था। इस छापेमारी में नकद, कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि चार निविदाओं में केवल तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों ने भाग लिया था। उसमें दो कंपनियों को एक एक टेंडर मिला, वहीं एक कंपनी को दो टेंडर मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक को निविदा मिले, तीन संयुक्त उद्यमों ने चार एसटीपी निविदाओं में पारस्परिक रूप से भाग लिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कल कहा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्रदूषण में 30% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने हरित क्षेत्र को बढ़ाया है और इस साल दिल्ली सरकार ने 64 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय डीजीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का विस्तार किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण कोर्स प्रदान करना है। विश्वविद्यालय ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि यह समझौता ज्ञापन बुधवार को नई दिल्ली में किया गया। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा सैन्य कर्मियों, चाहे वे वर्तमान में सेवारत हों या सेवानिवृत्त, उनके लिए पुनर्वास पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये 3 महीने से लेकर 6 महीने की अवधि के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स हैं। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने कल मुंबई में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के महर्षि कर्वे शैक्षणिक परिसर में विश्वविद्यालय के 109वें स्थापना दिवस की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और सर्वश्रेष्ठ गैर शिक्षण कर्मचारियों को भारत रत्न महर्षि ढोंडो केशव कर्वे पुरस्कार प्रदान किए और चयनित छात्राओं को छात्रवृत्ति के चेक भी दिए। महाराष्ट्र के मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़ ने कल राज्य में लंबित सभी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने अधिकारियों को 2 साल से अधिक समय से लंबित सभी परियोजनाओं की रिपोर्ट 8 दिन के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि देरी से परियोजना की मूल लागत बढ़ जाती है। इस बैठक में मृदा और जल संरक्षण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र विधानमंडल ने मुंबई में विधान भवन के केंद्रीय कक्ष में कल कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। और अब चलते हैं कोलकाता। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कल आकाशवाणी कोलकाता का दौरा किया। उन्होंने स्टेशन की विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्य स्वास्थ्य विभाग स्तन कैंसर के मरीजों को टेली मेडिसिन की सेवा देगा। ये सेवा SSKM अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा जिलों के मरीजों को प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल में 24 मेडिकल कॉलेज OPD उपचार की सुविधा देते हैं और साथ ही 14 जिला अस्पताल भी हैं। इन सभी चिकित्सा संस्थानों को SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। और श्रोता, हम आपको मौसम के हाल बता देते हैं। तो राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश तथा गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। शगुन, ये तो बात हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की। अन्य महानगरों में मौसम आज कैसा रहने वाला है?
राइट, आई एम गोना स्टार्ट विद चेन्नई। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव रेन और थंडर शावर्स वुड अकर टुवर्ड्स इवनिंग और नाइट। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
और श्रोताओं, समय हो चला है इतिहास के पन्नों में झांक करके देखने का और आपको ये बताने का कि आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हुई थी। तो सबसे पहले शगुन, हम किस बारे में जानकारी दे रहे हैं?
वी आर गोइंग वे बैक इन टाइम। इन द ईयर 1787 रॉबर्ट फाउंडेड इंडियन बोटानिक गार्डन नियर कलकत्ता बाय KYD ऑन 273 एकर्स ऑफ लैंड।
और श्रोताओं को बता दें कि आज का ही वो दिन था जब लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।
In the year 1924, first photo was sent experimentally across Atlantic by radio across US and England, and first all-talking motion picture was shown in New York, Lights of New York, in 1928.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1944 में महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था।
In the year 1945, Nicaragua became the first nation to ratify the Charter of the United Nations. And in the year 1955, Marshal Tito and Nehru's joint declaration in Belgrade happened. And in the year 1992, the center decided to allow TV and radio time slots for private producers.
और श्रोताओं, आज का ही वो दिन था जब वर्ष 2008 में दक्षिणी मिस्र में 5000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई थी।
In the year 2006, Nasir Pass, a trading post between India and China, was opened for business.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2006 में विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया था और खिताब जीता था। वहीं 2012 में आज के दिन ही संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश के लिए चीन आकर्षक स्थान रहा। इसके बाद अमरीका और फिर भारत का स्थान बना हुआ था। और श्रोताओं, समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो हम आपको बता दें कि आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे हिंदी खड़ी बोली और भारतीय युग के उन्नायक कहे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने एक लेखक, निबंधकार, नाटककार, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्धि पाई थी। मिश्र जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र में अनन्य श्रद्धा थी। वे स्वयं को उनका शिष्य कहते थे और देवता के समान भी उनका स्मरण करते थे। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु या द्वितीय चंद्र भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि मिश्रा जी द्वारा लिखे गए निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता है। देश प्रेम, समाज सुधार और साधारण मनोरंजन उनके निबंधों के मुख्य विषय थे। उन्होंने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र में हर प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे थे और उनको हिंदी के आधुनिक निर्माताओं में से एक माना जाता है। और उन्होंने 1891 में कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। उनकी प्रमुख रचनाओं का अगर हम नाम ले तो कानपुर महात्मय, तृप्तितानम, तारापति पच्चीसी, दंगलखंड, प्रार्थना शतक, प्रेम पुष्पावली, फागुन महात्म्य, रेडला स्वागत और मन की लहर जैसी कई रचनाएं उनके नाम पर हैं।
And listeners, today we are also remembering Louis Armstrong. He was a leading trumpet player and one of the most influential artists in jazz history. Armstrong's best known songs include What a Wonderful World, Loving Your Rose, Hello Dolly, On the Sunny Side of the Street, Dream a Little Dream of Me, When You're Smiling, and When the Saints Go Marching In. He collaborated with Ella Fitzgerald, producing three records together, Ella and Louis, Ella and Louis Again, and Porgy and Bess. He also appeared in films such as A Rhapsody in Black and Blue, Cabin in the Sky, High Society, Paris Blues, A Man Called Adam, and Hello Dolly. And for you listeners, we have this beautiful song, What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself,
और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है कार्नेलिया सोराब जी की। वे भारत की पहली महिला बैरिस्टर थी, एक समाज सुधारक होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण लेखिका भी थी। कार्नेलिया सोराब जी ऐसे समय पर बैरिस्टर बनी थी जब इस क्षेत्र में महिलाओं को वकालत करने का शायद अधिकार भी नहीं था। अपनी प्रतिभा की बदौलत उन्होंने महिलाओं को कानूनी परामर्श देना शुरू किया और महिलाओं के लिए वकालत का पेशा खोलने की मांग उठाई। 1892 में वे नागरिक कानून की पढ़ाई करने के लिए विदेश गई और 1894 में भारत लौटी। और उस समय महिलाएं समाज में उतनी मुखर नहीं थी और न ही महिलाओं को वकालत का अधिकार दिया गया था, लेकिन अपनी प्रतिभा की बदौलत उन्होंने परामर्श देने का काम शुरू किया। उसके बाद लगातार इस क्षेत्र में वे आगे बढ़ती रहीं। और आपको बता दें श्रोताओं कि आज ही हम याद कर रहे हैं बाबू जगजीवन राम को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे आधुनिक भारतीय राजनीति के एक शिखर पुरुष थे जिन्हें आदर से बाबू जी के नाम से संबोधित किया जाता है। लगभग 50 वर्षों के संसदीय जीवन में राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और निष्ठा बेमिसाल है। उनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक, सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। सदियों से शोषण और उत्पीड़ित दलितों, मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए जगजीवन राम द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान ऐतिहासिक हैं। बाबू जगजीवन राम का ऐसा व्यक्तित्व था जिसने कभी भी अन्याय से समझौता नहीं किया और हमेशा दलितों के सम्मान के लिए संघर्षरत रहे। और विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने अन्याय के प्रति आवाज उठानी शुरू कर दी थी।
And listeners, today is the birthday of the actor Sylvester Stallone, the actor, screenwriter and director also, who's perhaps best known for creating and starring in the Rocky and Rambo film series, which made him an icon in the action genre, and also other films, Cobra, Tango and Cash, Cliffhanger, Demolition Man and The Specialist. He received a star on the Hollywood Walk of Fame in the year 1984.
श्रोताओं आज ही पुण्यतिथि है चेतन आनंद की। वे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे और बॉलीवुड फिल्मों को इस स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देव आनंद के बड़े भाई थे और शुरुआत में वे इतिहास के शिक्षक रहे और 1940 के दशक के शुरू में उन्होंने सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी और उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ था। इस फिल्म में वे मुख्य भूमिका में थे और चेतन ने बाद में अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई और जल्द ही इतिहास रच दिया था। आपको बता दें कि वर्ष 1946 में बतौर निर्देशक उनकी फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया था। और आपको यह भी बता दें कि फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1946 में जो पुरस्कार प्राप्त किया इसके बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन गई थी और ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित तथा उमा आनंद, कामिनी कौशल और रफीक अहमद के अभिनय से सजी ये फिल्म समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच की खाई में झांकती है और मानवीय संवेदनाओं को टटोलती है। लेकिन हम आपको सुनाते हैं किसी और फिल्म का गाना जिसे ही रांझा के नाम से हम जानते, जो अपने समय में एक आइकॉनिक फिल्म रही और उसके संगीत ने हमेशा लोगों के जहन में अपनी एक जगह बना करके रखी हुई है। उनकी मुख्य फिल्मों की बात करें तो नीचा नगर, हकीकत ही रांझा, कुदरत बाजी और हिंदुस्तान की कसम जैसी फिल्में हैं। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्होंने हकीकत के लिए जीता था और फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें कुदरत के लिए मिला था। आइए सुनते हैं उन्हीं की बनाई फिल्म का एक दूसरा गाना।
चले हम फिदा जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम फिदा जान तन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
एंड टुडे इट्स आल्सो द बर्थडे ऑफ द रॉक एंड रोल म्यूजिशियन बिल हेली। He is credited by many with first popularizing this form of music in the early 1950s with his group Bill Haley and his Comets, and for hits such as Rock Around the Clock, See You Later Alligator, Shake Rattle and Roll, Rocket 88, Skinny Minnie and Razzle Dazzle. And now I'll let his music speak with the song Rock Around the Clock.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 6 o'clock tonight. Put the bad guys on. Join me, hot. Have some fun when the bad guys want. We're gonna rock around 6 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4.
और श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है मणिकौल की, जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे और उनकी बनाई हुई फिल्में जैसे कि उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन, सतह से उठता आदमी जैसी फिल्में जो हैं वो यथार्थ की पृष्ठभूमि से जुड़ी लीक से हटकर बनी हुई फिल्में हैं। और उन्हें एक ऐसे भारतीय सिनेमा के पुरोधाओं के रूप में जाना जाता है जिसने लीक से हटकर अलग फिल्में बनाई थी और उन्होंने बहुत ही जल्द फिल्म मेकर के रूप में अपनी छवि बना ली थी। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये डायलॉग।
शाम हो गई और तू अब तक रोटी लिए खड़ी है?
मुझे ही रोटी लाने में देर हो गई थी। वो बेचारा वहाँ से भूखा बैठा होगा।
भूखा? सच्चा सा?
क्या बात है, आज रोटियाँ से क्यों मंगवाई है?
मुफ्त में मंगवाई है।
छोड़, इतनी बार कहा तुझसे, बात मत किया कर जंगी से। कभी मुझे भी अपने साथ ले चलेगा?
क्यों,
and listeners, today we are also remembering William Faulkner, the American novelist and short story writer who was awarded the 1949 Nobel Prize for Literature. Faulkner wrote 30 novels and many short stories but started as a poet. With his breakthrough novel, The Sound and the Fury, he began to use stream of consciousness to portray a character's flow of inner thoughts. His books often are told from the viewpoint of several characters. These locals became the setting for several of his best-known works, including As I Lay Dying, Life in August, The Hamlet and Go Down Moses.
और श्रोताओं को बता दें कि आज जयंती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। वे महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। उन्हें आज भी एक प्रखर राष्ट्रवादी और कट्टर देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। वे सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और अपने सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही जयंती है अनवर जलालपुरी की। वे यश भारती से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर थे। आइए सुनते हैं उनकी आवाज।
अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, अजब हाल अर्जुन की आंखों का था, बड़ी देर तक सिर्फ आंसू बहा। बढ़ी उलझने और बेचैनियाँ, लगा उनको घेरे हैं दुश्वारियाँ।
And today is also the birthday of the actor Ranveer Singh, who made his acting debut with a leading role in the movie Band Baja Barat. He has also worked in films such as Lutera, Goliyon Ki Raat Mein Ramlila, Bajirao Mastani and Padmavat.
और श्रोताओं, इसी के साथ ही अनुमति दीजिए निखिल और शगुन को कार्यक्रम आज की तरह यहीं पर संपन्न करने की। फिर मिलेंगे आपसे।
नमस्कार।